ओम शांति। आज कुमार भाई बहुत खुश है। खुश है? एक तो खास आदरणीय योगिनी दीदी जी मुंबई से आप कुमारों का ही क्लास कराने के लिए आए, अधर कुमारों का नहीं कराएंगे। ज्ञान सरोवर में आए हुए थे और कुमारों से खास अभी मिलने के लिए आए हैं। और दूसरी खुशी की बात ये है, आज कुमारों को अलग क्लास मिला है, नहीं तो रोज अधर कुमारों के साथ मिलता है। हम इस डर से अलग नहीं रख रहे थे कि इनकी गिनती ज्यादा है और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरे नहीं आएंगे, पर हम हैरान हो रहे हैं देखकर कि अभी भी कुछ सीटें खाली है। पर आप लोगों के बाकी साथी कहाँ गए? हमें तो लग रहा था 200-300 पैसेज में खड़े मिलेंगे, शायद कुछ चले गए हैं। कुछ गए हैं क्या आज, या कोई ऊपर घूमने गए होंगे, आखिरी दिन होगा? तो फिर भी शुक्रिया बाबा का, समा गए इस हॉल के अंदर, अच्छी बात है। बाहर खड़े होना भी कौन सी अच्छी बात है, तो अच्छा है। खुले दर्शन करेंगे अब दीदी जी के सामने। और आज भट्टी का ये अंतिम संपन्नता दिवस है, समाप्ति दिवस नहीं, संपन्नता दिवस। आज के पूरे दिन में हम सबको अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करना है। आज का हमारा स्वमान ही है, मैं प्रभु प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। तो दीदी जी की क्लास में लवलीन होकर बैठे रहना, ऐसे समझना सामने बाबा बैठे हैं अपने प्यार के सागर में डुबो लेने के लिए, और मेरी सब कमजोरियां बाबा अपने प्यार में समाकर समाप्त कर देंगे। आदरणीय योगिनी दीदी जी, विशेष प्रभु प्यार का जीता जागता उदाहरण है। आपके जीवन को हमने देखा, जितनी सरल जितनी इनोसेंट उतनी ही शक्तिशाली। तो भावना और शक्ति, प्रेम और शक्ति का अगर बैलेंस देखना हो तो आदरणीय योगिनी दीदी जी को देखा जा सकता है। आप यज्ञ के विशेष पिलर हैं, साकार मम्मा बाबा के हाथों से आप पले हुए हैं, और यज्ञ के बहुत विशेष विशेष कर्तव्य बाबा ने आपके द्वारा कराए हैं। अनगिनत अपने बाबा के गीतों की सुंदर रचना के साथ साथ बड़ी बड़ी महान गायक फिल्मी विभूतियों से उनको गवाना, तैयार कराना, ये कार्य विशेष दीदी जी द्वारा हुआ है। ताली अवश्य बजाएं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल जो वर्ल्ड लेवल पर सेवा कर रहा है उसके ट्रस्टी हैं, न सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं लेकिन मुंबई विले पार्ले सब जोन को संभालते हुए भी वहाँ सरकार की ओर से एक 6 मंजिला हॉस्पिटल बनाकर मैनेज करने के लिए ब्रह्मा कुमारी को दिया गया था। आप उसके भी ऑनरेरी डायरेक्टर हैं और पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से वो हॉस्पिटल सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। और न सिर्फ अनगिनत बीके महारथी भाई बहनों की वहाँ सेवा होती है, आम पब्लिक को भी स्वास्थ्य के द्वारा बाबा का संदेश बहुत अच्छी रीति पहुँच रहा है। आप ताली बजाने जैसी बात है। आप बिजनेस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने बिजनेस विंग में अनगिनत सेवाएं की हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज के द्वारा अनगिनत कंपनीज में सेवा करके उनको अपने समीप लाया है, अनेकों कार रैलीज या इस तरह की अभियानों का आयोजन आपके द्वारा किया गया। तो आप बाबा का अनमोल रत्न आज अपने जीवन के अनुभव द्वारा कि इतने अधिक व्यस्त रहते हुए भी आप मस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो आज हम सबको बताएंगे ब्रह्मा बाप समान बेफिकर स्थिति कैसे बनाई जाए। दीदी जी का जीवन ही उसका एक मिसाल है, इसलिए इनका मार्गदर्शन हमें परफेक्टली इसके लिए गाइड करेगा। और जैसे दीदी जी का क्लास पूरा होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ही हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी भी पधारेंगे। अभी मैं आदरणीय योगिनी दीदी जी से अनुरोध करती हूँ आज के विषय पर।
ओम शांति।
सॉरी दीदी, एक छोटी सी सूचना, काठमांडू नेपाल के जो भाई जिनकी सेवा की ड्यूटी है, 8-10 भाई इधर ही बैठे हैं, भाई उनको बुला रहे हैं, चले जाएं। आदरणीय दीदी जी,
कुमारों का ये संगठन, मैं तो कहेंगी कि ये गणेश उत्सव चल रहा है, कल गणेश चतुर्थी थी और उसमें आप सब तपस्वी कुमार गणपति माना गुणों का पति, और बाबा ने ये टाइटल किसको दिया था मालूम है? जगदीश भाई को, कुमार थे तो बड़े बड़े कान, क्योंकि सहन करने की शक्ति। गणपति का पेट भी बड़ा बड़ा बताते हैं ना, क्यों? समाने की शक्ति का प्रतीक है। और फेस कौन सा बताते हैं? हाथी का। उसका कारण क्या, किसका प्रतीक है? देही अभिमानी बनने का प्रतीक। कोई हाथी का तो नहीं होता है ना, परंतु देही अभिमानी बनना है। और उसका वाहक क्या, वाहक क्या होता है? चूहा, चूहे पर बैठे। क्यों? क्योंकि सब कुमारों ने क्या किया, माया पर विजय प्राप्त वो करते हैं, तो आप भी उनकी यादगार हो, माया पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए छोटा चूहा उनका वाहक बताया गया है। चूहा ऐसा होता है ना, फूक मारता है, काटता है, पता नहीं पड़ता है। सुबह उठे तो बोलेंगे अरे चूहा काट के गया, पता ही नहीं पड़ा। तो माया भी ऐसी है, परंतु मैं आपको कहेंगी कि आप सब कुमार हमारे बाबा के तपस्वी त्यागी, बाबा के यज्ञ के आधार स्तंभ हो। ये हम जरूर कहेंगी कि ये कुमार जीवन है। सब्जेक्ट आज का बहुत अच्छा है कि ब्रह्मा बाप समान बेफिकर बादशाह की स्थिति हमें कैसे बनानी है। जरूर है ये जीवन में चलते चलते होता है, परंतु वर्तमान समय हमको बाप दादा ने यह इशारा दिया है कि आप कितनी भी जिम्मेवारी संभालते हो, परंतु जिम्मेवारी संभालते संभालते जब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेफिकर बादशाह अपने आप को डबल लाइट अनुभव कर सकेंगे। ये है, आप सब अभी यहाँ सभा में बैठे हो, बेफिकर बादशाह होके बैठे हो ना कि नहीं? हाँ बैठे हो। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी सोच चलता है, कभी कभी फिकर शुरू हो जाती है कि पता नहीं मंजिल तो बड़ी ऊंची है, हम चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। और दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि अमृत वेला उठने से ही चिंताओं के टोकरे उनके ऊपर तो बहुत ही रहते हैं, परंतु हमको बाबा ने इन सब बातों से दूर बेफिकर बादशाह बना के रखा हुआ है। देखो बाबा ने हमको कितने टाइटल, मुरली में रोज बाबा हमें कितने टाइटल देते हैं। आप सिर्फ अपने टाइटल को ही याद रखेंगे तो भी बेफिकर बादशाह बन जाएंगे। कितने टाइटल है बोलो, हाँ कितने टाइटल है। बाबा हमें क्या बोलता है, त्रिकालदर्शी, खुदाई खिजमतगार, बोलो टाइटल। और कितने टाइटल है, स्वदर्शन चक्रधारी, और कौन सा टाइटल मिला है याद करो, वरदानी, विश्व कल्याणकारी। उसी तरह से बाबा ने और बहुत हजारों टाइटल है, खाली टाइटल से ही याद करेंगे नशा चढ़ जाएगा। उसमें से एक टाइटल बाबा ने हमको दिया है, बेफिकर बादशाह। तो जब हमको बेफिकर बादशाह बनना है तो हमें बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। मैं बहुत सुंदर हमारे साथ के भी बाबा के अनुभव सुनाएंगी। हमने देखा है कि बाबा के मस्तक पर कभी भी कोई चिंता की रेखाएं कभी भी देखी नहीं, सदा बाबा बेफिकर बादशाह रहे। बाबा के जो हर संकल्प थे, बोल थे, कर्म जो था, वो बाबा की ये विशेषता थी कि बाबा कैसे जो संकल्प करते थे कैसे प्रैक्टिकल में हो जाते थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, जैसे ही बनाया बाबा ने अपने संकल्प बोल कर्म से बाबा वारी गए। बाबा ने कहा तो तुरंत बाबा ने, जैसे सबको पता है कि ट्रस्ट बना लिया, बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर कभी संकल्प नहीं आया, कभी बाबा ने पैसे को फिर हाथ नहीं लगाया, बहनों को सब कुछ सौंप दिया बाबा ने। बाबा हमेशा मैं देखती थी कि हिस्ट्री हॉल जो छोटा है वहां एक कृष्ण का चित्र, तो बाबा हमेशा देख करके ये बोलते थे, संकल्प बोल और कर्म तीनों में, तो बोलते थे अरे कल जाके तो मैं ये बनने वाला हूं। बाबा को सदा ये नारायणी नशा रहता था कि यही तो मुझे बनना है। प्रैक्टिकल में हमने देखा कि बाबा ने इतने यज्ञ में विघ्न आए, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते तो हम कहते हैं ना विघ्न तो आए, परंतु बाबा ने क्या कहा, सत्य की नाव जो है वो हिलेगी डोलेगी परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। तो बाबा निश्चित रहे क्योंकि एक बल और एक भरोसा था। मुझे याद है कि हम जब भी वेकेशन में यहां आते थे मधुबन में, पांडव भवन ही था उस समय, तो बाबा देखो हम आते ही अरे आ गई ठीक हुआ नहीं, आते ही बाबा वहां खड़े होते थे बाहर, तो बहुत रूहानी दृष्टि से सबसे पहले बाबा हमें भरपूर करते थे। उसके बाद बाबा फिर मिलेंगे, बैठेंगे पार्टी से, फिर टोली बाबा देंगे, खुश खैराफत बाबा पूछेंगे। देखो बाबा कितनी बार मिलते थे, उसके दो बार हो गया, तीसरी बार बाबा हम जब हमारे साथ बाबा ब्रह्मा भोजन करते थे। आज कोई भी गुरु होंगे दुनिया में वो कोई अपने शिष्यों के या किसी के साथ ऐसा बैठ के भोजन करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाबा हम बच्चों से ब्रह्मा भोजन करते थे तीसरी बार। फिर चौथी बार बाबा शाम को, सात दिन रहते थे तो शाम को पिकनिक कराते थे। पांचवी बार बाबा हम लोगों से खेलते थे, हम कहते ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही से खेलूं तुम्ही से बैठूं, तो बाबा बैडमिंटन या कुछ भी बाबा बच्चों से खेलते थे, कभी कभी बुला के मक्खन रोटी भी खिलाते थे। ऐसी पालना कौन करेगा, और जब जाने का समय होता था तो बाबा सबको बादाम मिश्री, सब बच्चे जितने थे बाबा बादाम मिश्री बहुत प्यार से खिलाते थे। उसके बाद जब जैसे जा रहे थे, वहां से जाते हैं, तो बाबा वहां दूर एक पांडव भवन में लास्ट है जहां से हम चल के पीछे से जाते थे, बाबा वहां खड़ा रह के ऐसा रुमाल होता था बाबा के पास, तो ऐसे ऐसे जब तक बाबा हमें देखे, हम बाबा को देखे, तब तक बाबा हमें ऐसा रुमाल से बहुत प्यार से छुट्टी देते थे। तो बाबा के अंदर हमने देखा कि इतनी रॉयल्टी थी, चलना उठना बैठना हर बात में। बाबा ने बेगरी पार्ट में भी कभी किसी से मांगा नहीं। बाबा का ये प्रिंसिपल था कि मांगने से मरना भला। हमारे पास गुलजार दादी के साथ हमारे अंग संग हमको काफी मौका मिला रहने का, तो दादी भी बताती है कि जब ऐसा बेगरी पार्ट होता था तो बाबा हम लोगों को चलो चलो, क्लास के बाद बच्चों को बोलता था चलो चलो अभी हम लोग वॉक लेने जाते हैं, और फिर वहां से नाश्ता ही एस्केप हो जाता था, और वहां बेर होता था, जामुन होते थे, बेर होते थे, तो ये लोग खा पी के आते थे। तो बोलते थे कि अभी हम ये बताती हूँ कि ऐसा बेगरी पार्ट में करते थे, परंतु जब हम बाबा के साथ थे हमको कोई फिक्र नहीं, हमको कोई चिंता नहीं, ना हमें कभी भी कुछ ऐसा पता भी पड़ा कि ये बेगरी पार्ट जो है वो हमारा चल रहा है। और रॉयल्टी आप बाबा की देखिए, हमको ये अनुभव है कि बाबा के अंदर जितनी रॉयल्टी उतनी बाबा के परिवार में भी। निर्मल शांता दादी के साथ भी अंग संग रहने का बहुत मौका मिला, तो दादी एक बार पार्ला में आई थी, तो क्या हुआ कि दादी को हाथ पकड़ के मैं राउंड लगा रही थी, तो किचन में जब गए तो दूध रखा था बहनों ने, तो दूध उबल रहा था, और बहन कहां आजू बाजू गई होंगी, अभी हम होती थी तो मैं भी बोल देती थी अरे रे ये दूध उबल गया है क्या ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी बोल सकते, लेकिन वो बहन आ गई दौड़ते दौड़ते, दादी ने उसको इतना अच्छा क्या कहा, अरे अभी से सतयुग की घी दूध की नदियां इधर बहने लगी है, तो देखो कहना था वो कह दिया, परंतु कितनी रॉयल्टी से दादी ने कहा। ये बाबा और परिवार दोनों से, निर्मल शांता दादी से हम सीखे, ऐसी बहुत बातें हैं। दादी ने, प्रकाशमणि ने हमको यहां से मधुबन से फियाट गाड़ी दिया था, क्योंकि दादी जब मुंबई में रहती थी तो दादी हमारे कांदीवली में, मुंबई में ही एक सबब है, वहां आती थी, तो मैं सीखी थी 18 साल की हुई गाड़ी, तो दादी को स्टेशन पर छोड़ने जाती थी हमेशा, दादी आएगी मैं स्टेशन तक छोड़ने जाती थी, तो दादी को पता था इसको आती है, तो दादी ने जब मैं मधुबन में आई 75 में पार्टी लेके सेंट्रल सांता क्रूज से, तो दादी ने गाड़ी दिया, तो मैं निर्मल शांता दादी को इस गाड़ी में एक बार गाम देवी सेंटर, जो मुंबई में दूसरा सेंटर है, वहां लेके गई। जब हम वापस लौट रहे थे तो गाड़ी हमारी बिगड़ गई, तो मेरे को लगा थोड़ा फिकर हो गया, चिंता हो गई, अरे ये दादी बैठी है, गाड़ी मेरी बिगड़ गई, क्या करूं क्या करूं। इतने में तो दादी ने खोला, तो दरवाजा खोल, तो दादी का दरवाजा भी खोला, दादी उतरी, बोला बोनेट खोल, बोनेट खोला, तो चार प्लग में से एक प्लग निकल गया था उसका, दादी को पता था, दादी ने लगा दिया, और गाड़ी कहते चालू कर, मेरी चालू हो गई। तो देखो बाबा ने इनको ऑल राउंड ट्रेनिंग, और कैसा निर्माणता, कोई फिक्र नहीं, दादी तो बिल्कुल बेफिक्र बादशाह थी, ऐसे नहीं अरे रे गाड़ी बिगड़, कुछ नहीं, और हम लोग चल पहुंच गए। तीसरा एग्जाम्पल दादी का दूं मैं, कि एक बार चप्पल टूट गया दादी का, तो मैंने साथ में रहने वाली बहन को बोला ये बहन तू ये चप्पल है ना, तो मोची को बुला के ला इधर। दादी ने कहा तुम ये सब छोड़, तू मेरे को हैमर दे और एक स्क्रू दे, और दादी ने फटाफट चप्पल बना दिया। तो हर चीज आप देखो, कहना बोलना चलना रॉयल्टी। बाबा का बच्चा भी नारायण दादा था, उसके अंदर भी अभी हॉस्पिटल में अपनी मुंबई की थोड़े एक दो मास पहले ही शरीर छोड़ा, थोड़ा समय पहले, परंतु उनके अंदर भी वही रॉयल्टी। वो मधुबन यज्ञ में फ्रूट भेजेंगे, ड्राई फ्रूट देंगे, सारे परिवार को मैं अच्छा सा जानती हूँ, आते भी है हमारे पास, अभी भी बाबा की छोटी लड़की जो है सूर्याबेन वो आती है, मिलती है, और अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनका ग्रैंडसन भी ब्रह्मा बाबा का। तो हर एक के अंदर हमने ये देखा, इतनी रॉयल्टी, बेस्ट फ्रूट दादा भेजेगा इधर, नारायण दादा बेस्ट ड्राई फ्रूट देगा। तो ये हम देखेंगे कि बाबा का जो विशेषता है कि बाबा के अंदर जितनी रमणीकता थी उतनी ही बाबा के अंदर गंभीरता भी थी, दोनों बातें थी। हम मधुबन में एक बार आए और उस समय 300 लोग खाली होते थे, तो लगता था अरे ये तो मधुबन पांडव भवन फुल हो गया, अभी तो जगह नहीं। अभी कितने आते हैं? 30,000 आएंगे तब हम कहेंगे, पर उस समय तो 300 लोगों में। तो हम बाबा को रोज गुड नाइट करने जाते थे, तो एक बहन भी, हम लोग 5-10 कन्याएं थी छोटी छोटी, तो एक बहन आई, थोड़ा रोना जैसा मुंह था, रोते रोते आई, अरे बाबा आज तो ये फुल हो गया है। और उस समय सब कुछ बहने संभालती थी, तो किशनी दादी प्रकाशमणि दादी की बहन थी, तो बोला इसने मेरे को कहां भी बाबा जगह ही नहीं दिया है, अभी मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो बहुत जगह है। तो हम लोग सुनने लगे, तो बाबा ने कहा, तो बाबा के कमरे में ही हम लोग खड़े थे, सब गुड नाइट करने गए थे, तो अभी बाबा के कमरे में आपने वो खटिया देखी है, एक है चारपाई वाली, चार पहिए है, और वो नहीं तो व्हाइट कलर का क्या बोलते है, हाँ पट्टी से है, पट्टी से है। तो बाबा ने कहा देखो बहुत जगह, इसके नीचे बहुत जगह, तू जाके सो जा। वो सोई नहीं, परंतु जो स्ट्रेस में आई थी, इतने टेंशन में आई थी, वो हंसने लगी। उसको जगह तो दे ही दिया किशनी दादी ने, पर वो हंसने लगी। ऐसे बाबा के अंदर हमने देखा कि बड़ा दिल। एक बार हम बाबा से छुट्टी लेने गए, बाबा ने, हम वेकेशन में जाते थे, तो बाबा ने कहा अच्छा तुम आए हैं, अभी जयपुर में म्यूजियम खुला है, दिल्ली में, आगरा में बड़ा म्यूजियम खुला है, तो आप लोग सब जाओ। तो हम तीन बहनें, एक भाई हमारे पास रोजी बहन के फादर थे नारायण दादा, वो हमको लेके सबको चले। तो हम छुट्टी लेने गए बाबा से, देखो बात बहुत छोटी है, हमको अपील कर गई। तो हम लोग तीन बहन में से एक बहन को छुट्टी लेते, थोड़ा आंख में पानी आ गया, तो बाबा ने क्या किया, पानी देखा तो अपना रुमाल था, बाबा ने वो बहन को पोंछने के लिए, वो इतना ढूंढा उसके पास नहीं था, तो बाबा ने उसको ये जो रुमाल था वो पोंछने के लिए दिया। वो बहन ने अपने ऐसे ऐसे करके आंसू पोंछ लिए, और रुमाल तो बाबा का था, तो वापस देने लगी। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, अभी ये तू तेरे पास ही रख ले। बाबा ने उनको ऐसे करके वो किया। तो मेरे को ये, मैंने देखा, मैंने कहा देखो बाबा की ये रॉयल्टी, बाबा की ये फ्राक दिल, कमाल की बात है। हम लोग देखते थे कि बॉम्बे से आम भेजते थे, तो बाबा खुद पूरे इंडिया में भेजते थे। हाँ, रिलेशनशिप, बड़े बड़े ऑफिसर जो भी बड़े बड़े होते थे, या बाबा के बच्चे भी होते थे, बाबा खास जिसके पास पास होता था ट्रेन का, उनको बुलाते थे, और फिर बाबा उसको चारों बाजू भेजते थे, जून मास में अंगूर। और मैंने खुद ने देखा, अभी जो बाबा का रूम है उसके अभी बड़ा कर दिया, लेकिन आधा रूम फ्रूट की कोठी थी, तो बाबा खुद बैठ के लच्छू बहन से एक एक काम देती थी, बाबा ऐसा करेगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे बनाते थे। कोई भी बाबा के पास से खाली हाथ, हम कहेंगे, कभी नहीं जाते थे। बाबा बच्चों को, जब मधुबन में हम जाते थे, बाबा बड़े प्यार से कुछ न कुछ, जिसको हम कहते वो सौगात जो है, वो बाबा हमेशा हम बच्चों को देता ही था। जैसे बाबा में इतना उदारता थी, ऐसे ही बाबा में गंभीरता भी थी। एक बार मधुबन में हम देखे, जब से मैं आई हूँ 67 से, ज्ञान 63 में लिया, परंतु मुंबई में बाबा को मिली थी पहले, पर मधुबन में जब से आई, कंस्ट्रक्शन का कारोबार जो है वो तो चलता ही रहता है। तो ये जो शशिबेन की ऑफिस है ना, निर्भर भाई जी की ऑफिस, उसके ऊपर बन रहा था, तो पंजाब से बहुत कुमार आए थे। तो खुद बाबा ने क्या किया, वो तगारा बोलते हैं ना, तो रेती सीमेंट सब पड़ा था, बाबा ने खुद ने उसमें डाला उठाया और बाबा वो पहले चढ़ के सीढ़ी वहां लेके गए। सब कुमारों ने देखा, सारे कुमारों ने ये कार सेवा किया। तो देखो ये आराम से हाँ कैसा इजी ये कार्य जो है वो पूरा हो गया। तो बाबा में ये रमणीकता भी थी, साथ में उदारता भी थी, गंभीरता भी थी। ये कई हमने अनुभव जो है वो बाबा से किया। बाबा के अंदर जितनी महानता थी उतनी ही बाबा के अंदर निर्माणता भी थी। एक बार हम लोग, आप लोग भी जाते हो ना मधुबन की पहाड़ी में, जब आते हो तो सब मधुबन पहाड़ी चढ़ते हैं ना, तो बाबा भी हम सबको लेके जाते थे वो पहाड़ियों पे। तो बाबा जब पहाड़ी पे लेके जाते थे तो हमारा 3 कदम, बाबा का 1 कदम, बाबा चढ़ जाते थे फटाफट। और जब बाबा ऊपर चढ़ जाते थे, नीचे से बच्चों को देखते थे हाँफते हाँफते, धीरे धीरे सब ऊपर चढ़ते थे। तो बाबा बाहें पसार के खड़े रहते थे और बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ। उसके बाद फिर बाबा क्या कहेगा कि देखो बाबा तो ऊपर जल्दी आ पहुंच गए, आ गए, क्यों क्यों बोलो, क्या जवाब दिया होगा बाबा ने कि बाबा को तो डबल इंजन लगा हुआ है। निर्माण का बच्चे नीचे है पर बाबा को तो डबल इंजन है, इसलिए बाबा लगा हुआ है बाप और दादा, इसलिए बाबा जो है वो ये पहाड़ी जो है वो कैसे फटाफट चढ़ गए। अभी थोड़े दिन पहले जैसे रक्षाबंधन का दिन गए, वैसे मधुबन में भी जैसे बताया कि कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहता है, तो हमारे एक बार चंद्रास बाबू और बाबा दोनों वहां चौक, पांडव भवन का चौक है ना, वहां बाहर बैठे थे। और बाहर बैठे थे तो दो माताएं मजदूर की आई, छुट्टी थी, पर वो दो माताएं आके थोड़ा दूर खड़ी रही और आपस में बातें करने लगी। मजदूर माताएं थी तो आपस में बातें करने लगी। तो जब बातें करने लगी तो पूछा बाबा ने चंद्रास बाबू को कि तू पूछ के आ कि इसको क्या काम है कुछ बाबा का। तो चंद्रास बाबू पूछने गए तो कहने लगी कि हमको तो है ना बाबा को राखी बांधना है, आज राखी का दिन है ना। तो बाबा ने ये सुन लिया, तो बाबा ने ऐसे ऐसे किया, आगे गए और बोला भले बांधो राखी। तो उन्होंने राखी बांधा। फिर बाबा ने चंद्रास बाबू को कहा कि तू उसको खर्ची दे दे। तो चंद्रास बाबू ने वो माताओं को खर्ची दे दी। खर्ची देने के बाद वो आया तो बाबा ने उसको पूछा कि तूने इन लोगों को क्या खर्ची दिया। तो चंद्रास बाबू ने कहा उस जमाने के अनुसार, तो कहा कि बाबा हमने उनको 2-2 रुपया दिया। तो बाबा ने कहा तूने 2-2 रुपया ही दिया, उसने किसको राखी बांधा। इसने ऑलमाइट की ऑथोरिटी, और बाबा ने कहा उसको कि आज जो मुरली में नाम आया था ना सुबह के आदि देव, तो बाबा ने उनको ये कहा कि उसने आदि देव ब्रह्मा को राखी बांधा और तेरे को तो उसको अशर्फियां देनी चाहिए। तो फिर चंद्रास बाबू गए और उनको 10-10 रुपया, वो बहुत हो गया उस जमाने में, और 10-10 रुपया उनको देके आए। तो ऐसे बाबा जो थे वो हमारे गरीब निवास बाबा थे। और जैसे बताया कि देखो बाबा हमेशा इकोनॉमी बताई, उस तरह से गंभीरता का गुण बाबा का हमने बताया। बाबा बेफिक्र बादशाह भी रहते थे। गुलजार दादी हमें बहुत अच्छा, हम दादी को बीच पर लेके जाते हैं हमारे पास जब रहते हैं, तो दादी बहुत बाबा के साथ का अपना अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती है। एक इतना अच्छा अनुभव दादी ने सुनाया हमको कि बाबा ने कैसे हम सबको संतुष्ट भी, बाबा कैसे सबको रखते थे। तो एक बार ये लोग, बाबा को आवाज आई कि भारत द लाइट हाउस है, आपको भारत जाना है अभी। तो पहले तो एक था, बाद में उन्होंने कहा आप यहाँ रहो, तो 1947 के बाद ये लोग रहे। फिर 51 में आवाज आई कि आपको जाना है। तो बहुत बड़ा शिप, और इतने 300 लोग, इतने 300 का सामान भी लेके आने का था, सब कुछ था, तो क्या करे। तो बाबा ने सब बहनों को कहा कि सबके पास जो डायरियां है ना, तो बाबा ने कहा एक सीमेंट जोर से बड़ा मतलब एक बड़ा खड्डा खुदवाया और सबको बोला कि इसके अंदर सब आप लोग अपनी डायरी जो रखी है वो डालो। हर एक सोच में पड़ गई, अभी ये तो ज्ञान का खजाना, आपके पास ये डायरियां है, कोई बोले इसको निकालो फेंको तो फेंकेंगे। हर एक सोचेगा ना ये तो मेरा ज्ञान का खजाना है, पर कुछ भी हो दुनिया का खजाना पर अपना खजाना ये ज्ञान का तो सबको प्यारा होता है। तो हर एक सोच में पड़ गए, थोड़े वो गए, बाबा ने कहा डाल। पर श्रीमत ये बात थी कि सब श्रीमत को फॉलो करने वाले थे, हाँ जी का पाठ तो सबका पक्का। तो बाबा ने कहा और सब ने डाल दिया। बाबा ने कहा अभी क्या करो, इसके ऊपर सीमेंट कॉन्क्रीट से इसको बंद कर दो। सबके चेहरे वो हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा कि ये जो आप लोगों ने डायरी अंदर डाली है ना, वो द्वापर युग में शास्त्रों के रूप में बाहर आएगी। तो सभी इतने खुश हो गए कि बात मत पूछो, सभी को ये हो गया कि नहीं ठीक है, कोई को वो माइंड फिर नहीं हुआ। तो देखो हम कहेंगे कि हर बात में बाबा जो है वो बच्चों को कैसे चलाते थे। और आज का हमारा जो विषय है हाँ, कि बाबा सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में सदा बाबा रहे। वो तो जैसे मैंने आपको बताया, दादी गुलजार भी हमें कई बार ये सुनाया है, सबको ये पता है कि जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था तभी क्या हुआ, एक बार एक बहन जो सेवा में थी, अपनी ड्यूटी पे थी, तो उसने बाबा को आके कहा कि बाबा आज तो रोटी बनाने का आटा नहीं है, क्या करेंगे। तो उस समय भी बाबा के मस्तक पर रेखा में कोई वो नहीं था चिंता। बाबा ने कहा बच्ची तू चिंता क्यों करती है, और ही बाबा ने उसको बोला कि तू क्यों चिंता करती है, तो वो तू आराम तू बैठ जा, मतलब अभी तो बैठ गई। थोड़ी देर हुआ 12 बजा, अभी उसको लगा कि बेल बजने का टाइम होएगा तो क्या करूंगी मैं, तो फिर आई और फिर बाबा को बोलने लगी बाबा ये 12 बजने वाला है, बेल बजाना होगा, अभी क्या करे। बाबा ने उसको कहा कि तू रोज बाबा को भोग लगाती है, तो कहा बाबा मैं तो रोज बाबा को भोग लगाती हूँ। तो जब तू रोज बाबा को भोग लगाती है तो बाबा तेरे को कैसे नहीं खिलाएगा, तुम बेफिक्र रहे हो, तुम मत चिंता कर, तुम क्यों इतनी चिंता करती है। फिर वो बैठ गई, फिर बाबा ने बिठा दिया कि तू बेफिक्र रहो, तुम खिलाती हो बाबा को, बाबा बांधा हुआ है बाबा खिलाएगा। फिर तीसरी बार आई, बाबा अभी 12:30 होने को आया है, अभी क्या करे। बाबा ने कहा अच्छा बताओ बच्ची पोस्ट कब आती है, तो भी बाबा के फेस पर कोई चिंता की रेखाएं नहीं थी। बोला बच्ची बोलो पोस्ट कब, तो उसने बोला 12:30 को आती है। और सचमुच जब पोस्ट आई तो उसके अंदर कोई अनन्य गोपिका ने पैसे भेजे थे, जिस पैसे से आटा आया बनाया रोटी सबको मिल गई, लेकिन कोई को आधे को पता भी नहीं पड़ा कि भाई बेल क्यों देरी से बजा या क्यों नहीं मिला। तो देखो ये बाबा निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बाबा क्यों रहे, ये बताओ। बेफिक्र बादशाह कभी रह सकते हैं जब बाबा को पूरा निश्चय था, एक बल एक भरोसा था बाबा को। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के चार मैं कहेंगी फाउंडेशन, चार बातें हैं। सबसे पहले मुझे मेरे में निश्चय चाहिए, स्वयं में हमको निश्चय चाहिए। दूसरा हमें बाबा में परमात्मा में निश्चय चाहिए। तीसरा ड्रामा में निश्चय चाहिए। और चौथा किसमें चाहिए, ब्राह्मण परिवार में हमको निश्चय चाहिए। सबसे पहले हमको अपने में निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चल सकेंगे कि नहीं, मैं देवता बन सकूंगा कि नहीं। अपने लिए कुमारों को कभी कभी होता है, भाई हमको ये प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे, कभी बीमार होएंगे तो क्या, अनेक बातें होती है। परंतु नहीं, जब आपने अपना हाथ बाबा को दे दिया है ना, है ना, बाबा को जब हमने हाथ अपना दे दिया है तो बाबा जो है वो हमको जरूर मदद करने वाला है। ये हो ही नहीं सकता, निश्चय चाहिए स्वयं में। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपना स्वयं में निश्चय चाहिए। नंबर दूसरा, हमको बाबा में फेथ चाहिए। आज कोई भी होगा आपको पूछेंगे कोई कि ये आपके फादर है, आपके फादर होंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये तो मेरे फादर है। तो फादर है माना 100% है। बाबा के निश्चय में हम कहेंगे कि मेरे को 80% तो थोड़ा है, पर 20% मेरे को थोड़ा डाउट है, ऐसा हो सकता है? 100% निश्चय माना निश्चय, निश्चय है तो हमको 100% निश्चय होना ही चाहिए। तीसरा, ब्राह्मण परिवार जो हमको मिला है, तो देखो हम ये जानते हैं हर एक के अपने अपने संस्कार है ना। तो हम कभी कहते हैं पता नहीं इसके साथ मेरा क्या है, पल्ला पड़ा है, हाँ मेरे को ही ये परेशान करता है, हैरान करता है, मैं ये क्या है, मेरे को इतना बंधन क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ये क्यों कर रहा है। नहीं, देखो हमारे को हमेशा रिलेशनशिप हरेक से अच्छी रखनी है। यदि हमने कोई भी ब्राह्मण परिवार में है, हमने उसके साथ नफरत कर लिया, वैर विरोध कर लिया, तो कल समझो हम योग में जब हम बैठते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, क्या आएगा, वही व्यक्ति सामने आएगा, हमारा योग ही नहीं लगेगा। इसलिए हमारी जो रिलेशनशिप है, ब्राह्मण हमारे को परिवार मिला है तो हमें उस परिवार से भी निश्चय नाता निभाना है। और चौथा है ड्रामा। ड्रामा पर हमारा पूरा पूरा निश्चय रहना चाहिए। ड्रामा अटल है, भावी अटल है, ऐसे हम कहते हैं ना, तो ये तो अटल है। हमारे लिए बाबा समझाते हैं कि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तो ड्रामा क्या है, ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। बाबा ने हमको समझाया है ना, हमेशा ये समझो कि ड्रामा कल्याणकारी है ना। कोई बुराई में भी हमारा फायदा होने वाला होगा तो ऐसे होगा। एक कहानी सुनिए अपने अकबर बीरबल की, सुनिए। एक बार अकबर और बीरबल जो है वो दोनों शिकार पर जा रहे थे। जब शिकार पर वो लोग निकले तो अकबर की अंगुली कट गई, तो बीरबल ने उसको बोल दिया कि जो हुआ वो कल्याणकारी। उसको गुस्सा आया, मेरी अंगुली कट गई और ये बोलता है जो हुआ वो कल्याणकारी। तो उसको बहुत वो हो गया, गुस्सा आया, तो उसको जेल में डाल दिया, बोला मेरे को नहीं जरूरत, तू जेल में जा। वो गया तो वो अकेले घोड़े पर शिकार करने निकला। जब निकला थोड़ा गया तो आगे ट्राइबल एरिया, आदिवासी के लोग बैठे थे। उसने घोड़े से राजा को उतारा, बोला हम नक्की किया है हम लोगों ने, जो पहला आएगा ना उसकी हमको आज बलि चढ़ानी है। तो उसको ही पकड़ा। तो जब बलि चढ़ाने गए तो उन्होंने देखा कि ये तो अंगुली कटी हुई है और इसकी जो बलि है वो तो नहीं चढ़ सकती है। तो उसको भेज दिया वापस। वो आया वापस महल में और बोला पहले तो बीरबल को छोड़ो। तो बीरबल को छोड़ा, बोला तूने बरोबर बोला था कि जो होता है वो कल्याणकारी ही होता है। आज मेरी अंगुली नहीं कटती थी तो मेरा आज बलि चढ़ जाने वाली थी। तो बीरबल ने बोला आपने मेरे पर गुस्सा करके जेल में डाला, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी बलि आज चढ़ जाती थी। तो ये बाबा ने हमको पक्का कराया है कि जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कल्याणकारी है। तो हमको देखो चार बातों में पक्का निश्चय चाहिए, स्वयं में, परमात्मा में और ब्राह्मण परिवार में और साथ में ड्रामा में। ब्रह्मा बाबा भी इतने निश्चय बुद्धि होने के कारण ही अपन देखेंगे कि सदा बाबा क्या रहे, निश्चिंत रहे। जब ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चिंत रहे, इसीलिए सदा वो बेफिकर बादशाह रहे। तो निश्चय बुद्धि ही हमें बेफिकर बादशाह बनाती है। ब्राह्मण जीवन माना ही बेफिकर बादशाह हम है। हमें दादियों से भी बेफिकर बादशाह का जैसे बाबा में हम अनुभव करते, वैसे हमने दादियों में भी किया है। प्रकाशमणि दादी हमेशा कहती थी कि आपस में खीर खंड होके रहो। खीर खंड होके रहना माना लून पानी होकर के नहीं रहना है। खीर खंड माना जैसे चीनी होती है वो दूध में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है ना। तो खीर खंड होकर जब हम रहते हैं तो वो क्या होता है, यूनिटी। आपस में जब हम एकता से चलते हैं, आपस में जब हम एक मत, एक रस, एक नामी से चलते हैं, तो क्या हो जाता है, यूनिटी से ही हम बेफिकर बादशाह रह सकते हैं। प्रकाशमणि दादी में हमने ये देखा कि कभी दादी ने मैं नहीं कहा। सदा हमें ये सोचना है दादी की तरह, करण करावनहार बाबा है, मैं करणहार हूं। दादी हमारे पास 5 मास हॉस्पिटल में थी बॉम्बे की, तो हम रोज दादी के पास जाते थे, सारा दिन रहते थे। एक बार मैंने दादी की जो बुक थी ज्वेल ऑफ लाइट, जिसको रत्न प्रभा कहते ना, तो उसमें दादी के सारा जो दादी ने किया सेवा है वो फोटो के साथ था। तो मैंने दादी को खोल के दिखाना शुरू कर दिया। दादी को हमने कहा, दादी देखो आपने इतना अच्छा ओम शांति भवन बनाया, आपने ये यहाँ डायमंड होल बनाया, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, आप तो मंडेला से मिले, आपको पीस अवार्ड, ऐसे दादी को जो भी आता गया पीस अवार्ड मिला, बहुत सारा दादी का अचीवमेंट मैं दादी को ऐसे बताने लगी। दादी शांति से सुन रही थी, मैं पत्ते खोल के पूरी बुक बता दी और बंद करके रखा। दादी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, लेकिन दादी ने मेरे को इशारे से ऐसे किया, एकदम दादी ने बंद किया तो ऐसे किया। माना क्या, करण करावनहार बाबा है, मैं तो करणहार, मैं एक निमित्त आत्मा। दादी ने हमेशा अपने आप को निमित्त समझा। बड़े बड़े जब ओम शांति भवन बना, जर्नलिस्ट आते थे, दादी आप इतना चलाते हो। जब बाबा अव्यक्त हुए 300 सेंटर, जब दादी 2007 में, तब कितने सेंटर हो गए, हजारों में हो गए, है ना। तो पूछते थे, दादी आप इतना बड़ा चलाते कारोबार, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी क्या कहती थी, मैं कभी ये फिकर नहीं होता है। तो दादी कहती थी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं करती हूँ, ऐसा नहीं। हमारे साथ भी दादी जब बात करती थी ना, तो दादी ऐसे हमको बोलती थी, दादी का ये विचार है, मेरा विचार नहीं बोलती थी, दादी का ये सजेशन है, दादी ये कहना चाहती है। तो हमेशा दादी न्यूट्रल होके बात करती थी। हमेशा दादी ने अपने आप को निमित्त आत्मा समझा, इसलिए कभी फिकर में नहीं आई। दादी बेफिकर बादशाह की तरह रही। आप यज्ञ में, चाहे शांतिवन, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर, कहां भी जाओ और कहां भी दादी के फोटो देखो, दादी का ऑलवेज स्माइलिंग फेस हमने देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा है फिकर वाला। दादी हमेशा ऐसे बेफिकर बादशाह की तरह हर्षित मुख में ही दादी को हमने देखा। उसका कारण यही था कि दादी ने सदा अपने आप को क्या समझा, निमित्त। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए यह सदा मन में रखो कि करण करावन आरोह है, मैं ये काम करती हूँ, ये मैंने किया तो आपको भी टेंशन होने ही वाला है, मैं करने से होने वाला है नहीं, मैं तो एक निमित्त आत्मा हूँ। सदा यही हमें सोचना है। और देखो दादी ने आज हरेक को, जितनी बहने हैं हरेक को लीडर बनाया। शिकागो में दादी गई थी जब वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी और वहां विवेकानंद को 100 साल पूरा हुआ था। लेडीज में दादी एक ही थी, दादी मुंबई से ही गई थी और बहुत अच्छा दादी ने अनुभव सुनाया था। तो वहां सारे जर्नलिस्ट लोग थे तो दादी एक ही थी लेडीज में, तो दादी से पूछा और आजू बाजू अपने अमेरिका में जो बहने थी वो थी, दादी से पूछा दादी आपके फॉलोअर्स कितने हैं पूछा, तो दादी ने उनको कहा कि मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है। सीधा दादी ने कहा मेरे तो कोई फॉलोअर्स नहीं है। बोला आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है तो दादी ये सब आपके आजू बाजू खड़ी है इतनी बहने, ये सब आपके है कौन? तो दादी ने कहा ये सब मेरे लीडर है, ऐसे जवाब दिया। तो सारे खुश हो गए और दादी ने सचमुच आज जितने हजारों में हमारे सेंटर है वहां छोटी, थोड़े दिन पहले मैं विद्या नगरी जो है वहां गुजरात में वहां गई थी, 400-500 बहनें आई हुई थी, सब छोटी छोटी बहनें थी। तो मैंने पूछा तू कहाँ सेंटर, सब सेंटर संभाल रहे थे छोटी छोटी इधर उधर, सबने बोला मैं ये सेंटर में वो। तो इसका मतलब दादी ने देखो ऐसे छोटे छोटे बहने सबको लीडर बनाया है, प्रैक्टिकल ये बात है, इतने सेंटर में बहने रहती है। तो दादी ने देखो बहनों को इतना आगे किया, उसी तरह से दादी ने आप कुमारों को भी, हमेशा कुमार लोग दादी को क्या बोलते थे मालूम है? दादी को बोलते थे कि हमारे दादी का प्रकाशमणि नाम था दादी, ऐसे कुमार का दादी भी नाम था, पहले कुमार का दादी कहते थे क्योंकि बाबा तो तीन नाम है, एक लौकिक एक अलौकिक एक अव्यक्त बाप दादा रखते थे। तो सब कहते थे ये हमारे कुमारों की कुमार का दादी है, सब नशे से सारे कुमार लोग ऐसे बोलते थे। तो दादी ने कुमारों को जो है ना वो भी बहुत आगे दादी ने बढ़ाया। जैसे मैंने बताया कि कैसे दादी ने इनको समझाया कि हाँ जी का पाठ पक्का रखना है, दादी हमें श्रीमत पर कैसे चलना है दादी कुमारों को कराएंगी, हम सब बहनों को ये इन पर दादी हमें जरूर क्लास कराती थी। दादी कहती थी कि सबसे पहली श्रीमत जो है वो है हमारी मुरली, आज मुरली में जो भी बाबा हमें कहता है, कई चीज बाबा हमने हमको एक बार से ज्यादा मीठा बनो बच्चे, कोई भी कई बात होती है तो बाबा हमें आज बार बार ये कहता है, शुरू में मेरे मीठे बच्चे कहेगा, बीच में मेरे प्यारे मीठे बच्चे कहेगा, अंत में भी बाबा क्या कहेगा, मेरे मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार। तो मीठा बनना ये हमें बाबा की श्रीमत है, हमारे लिए ये मंत्र हो गया क्योंकि कई बार आया मीठा बनो मीठा बनो, तो ये हमारे लिए। तो श्रीमत जो है मुरली हमारे लिए पहली श्रीमत है। उसी तरह से एक बार मुरली चली थी तो बाबा ने कहा क्या कि मेरे वफादार बच्चे, मेरे फरमानदार बच्चे, ईमानदार बच्चे, मेरे आज्ञाकारी बच्चों को याद प्यार बाबा ने दिया। तो उसमें बाबा ने बीच में क्या डाला, मेरे आज्ञाकारी वफादार फरमानदार ईमानदार बच्चों को नंबरवार, बाबा ने शब्द डाला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने उनको याद और प्यार दिया। तो जितना हम बाबा को वफादार आज्ञाकारी है उतने ही परसेंटेज में हमको क्या मिलता है, याद और प्यार मिलता है। तो जगदीश भाई हमारे लिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमेशा उन्होंने श्रीमत पर चल, हांजी का पाठ उनका पक्का था। एक बार दिल्ली में ब्रह्मा बाबा गए, जगदीश भाई वहां थे, तो बाबा ने क्या किया उसको बोला, शिवरात्रि आने वाली थी, बाबा ने कहा तेरे को मेरे को किताब छपके देनी है, और उसमें जैसे मुरली में कल आया था ना, एक ईश्वरीय मत एक मनुष्य मत, बीच में हाशिया, एक बुक है, तो वो इंग्लिश हिंदी में छपानी है। अभी चार पांच छह दिन ही बाकी थे तो भी जगदीश भाई गए प्रेस में, प्रेस वाला ने समझा ये आया है अभी तो ये मेरे को बोलने वाला है, जल्दी चाहिए अर्जेंट है। तो जगदीश भाई ने सचमुच यही बोला, हमको ये जल्दी किताब छप के देनी है। बोला मैं तेरा नाम ही मिस्टर अर्जेंट रख देता हूँ, तुम जब आता है तब कहता है मेरे को अर्जेंट है, तो तेरा नाम ही मिस्टर अर्जेंट। फिर भी उसने रात दिन करके बना तो दी, लेकिन उनको बुखार आ गया 104। वो प्रेस वाले ने, एसी होता है ठंडा होता है, प्रेस वाले ने उसको बोला तेरे को इतना बुखार है तू आराम कर। वो कमला नगर गए क्योंकि बाबा रजौरी गार्डन में रहे थे, उस समय इतना बेगरीपाट भी नहीं था पर इतना भी नहीं था, तो ये यहां से सब सामान लेके रजौरी गार्डन लेके गए थे। जगदीश भाई जब गए कमला नगर तो एक चद्दर टूटी फूटी पैकिंग की पड़ी थी, वो बिछाई और सो गए। इतने में दरवाजा खटखटा तो लगा अभी कौन आया, खोला तो ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर दादा आए थे। तो बाबा ने उसको पूछा बच्चे तेरी तबीयत कैसी है, बाबा ने उसको बहुत प्यार किया। जगदीश भाई ने कहा कि देखो किताब छपाने के लिए तो बाबा ने मेरे को चार पांच दिन भी दिए, लेकिन प्यार करने में तो बाबा एक दिन भी नहीं रहा, उसका बुखार ही उतर गया। इतना बाबा ने प्रेम से वो किया कि एक दिन भी बाबा नहीं ठहरा और बाबा ने आपको प्यार किया। पर क्यों? क्योंकि जगदीश भाई ने भी दृढ़ संकल्प से, हांजी का पाठ पक्का श्रीमत, तो दृढ़ संकल्प से उसने ये बाबा का ने बताया, बाबा का काम पूरा किया। तो संकल्प जो है ना वही हमारे बहुत पावरफुल होने चाहिए। देखो आप लोग भी दृढ़ता भरा सदा संकल्प रखो, आप अपने संकल्प के रचयिता हो, हमेशा अपने लिए आप श्रेष्ठ संकल्प करो, दूसरों के लिए शुभ संकल्प करो। और जब हम अपना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ संकल्प को ही हम कहते हैं मनोबल। हम आज मनसा सेवा करना भी सब चाहते हैं तो हमारा मनोबल जो है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे घोड़े को रेस में दौड़ाते हैं ना, मन को कहते हैं घोड़े जैसा चंचल, तो रेस में दौड़ाना होता है तो उसको थाबड़ेंगे, उसको चना खिलाएंगे, उसको बहुत कुछ करेंगे, मालिश करेंगे, पालिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मन भी जब ऐसा है तो मन को भी तो एक्सरसाइज चाहिए, पावरफुल संकल्प में अपने लिए करना है। परंतु मनोबल बढ़ाने के लिए भी एकाग्रता की शक्ति जो है उसकी जरूरत है। और जब एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी तो कैसे, जितना हम अंतर्मुखी बनकर रहेंगे उतना हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी। और मनसा सेवा, बाबा जो कहते हैं अपनी और दूसरों की सेवा करना, उसको कहा जाता है मनसा सेवा, वो हम कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम हो रहा है परंतु मैं आपको बताएगी पांच मनसा सेवा के मुख्य स्वरूप है, आप ध्यान से सुनना और आपको ये करना है। आज सारा दिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति रखनी भी है, शॉर्ट में पूरा करती हूँ, बेफिक्र बादशाह की स्थिति भी आपको रखनी है और रात को चेक करना कि मैं कितना बेफिक्र बादशाह की स्थिति में आज मैं रहा। तो मनसा सेवा के पांच स्वरूप में पहला है मन की मन से सेवा करना, माना हमारे संकल्प जो है वो दूसरे को पहुंचना चाहिए। ध्यान से ये सुनना आप, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, विश्व किशोर दादा एक बार मुंबई में थे हरकिशन दास हॉस्पिटल में, तो बाबा को बहुत प्यार था, स्नेह था। बाबा रात को 2 बजे उठ जाते थे और बाबा कहते थे ये बच्चे को मैं शकाश दूंगा। तो हॉस्पिटल में विश्व किशोर दादा भी 2 बजे उठ जाते थे और कहते थे बाबा मुझे याद कर रहा है। तो ये क्या हुआ, संकल्प से, संकल्प की सेवा। बाबा शकाश दे रहा है, वो वहां उठ रहा है, वो वाइब्रेशन ले रहा है। ऐसे में रिसेंटली आपको प्रैक्टिकल में गुलजार दादी का मिसाल सुनाती हूँ। जब यहाँ अव्यक्त बाप दादा का प्रोग्राम था महाराष्ट्र, पूरा 30,000 से ऊपर लोग बैठे थे और सारे दादी मेरे पास पार्ला में थी, सब लोग योग लगा रहे थे पर दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दादी आ सकती नहीं थी, बहुत वीकनेस थी। हमने कहा दादी चार्टर फ्लाइट करते ये करते वो करते, पर प्रैक्टिकल देखा शाम को भी दादी नीचे भोग लगाएंगी कि नहीं। परंतु शाम हुई 6 बजा दादी नीचे भोग लगाने के लिए आई। 3 दिन से हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन लगातार रात दिन यहाँ भट्टी कर रहे थे कि बाबा को मिलना है, बाबा आए। ये भट्टी यहाँ रात दिन चल रही थी शांतिवन में। तो दादी बैठी तो हम तो ऐसे ही भोग लगाया है, हमको कुछ ऐसे ख्याल नहीं था, पर बाबा आ गए वहां पार्ला में। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ बाबा आ गए और बाबा ने मुरली भी चलाई और यहाँ सारा दिखाया। वो लोगों को ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे सचमुच बाबा हमें डायमंड हॉल में मिले। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इतने लोगों ने संकल्प किया कि हमें बाबा से मिलना है। तो देखो वहां बाबा की पधरामणी हो गई, बाबा आए और बाबा ने मुरली चलाई। तो ये क्या कहेंगे? संकल्प से संकल्प की सेवा, पहला। दूसरा हम कहेंगे वृत्ति से वृत्ति की सेवा। वृत्ति से ही देखो क्या होता है, संकल्प से वृत्ति बनती, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो एक बार बाबा को कोई एक बांधने आए, ये कर रहे वो कर रहे ऐसा है ऐसा करके वो अपनी वृत्ति एटीट्यूड गलत करके आया। लेकिन बाबा ने उसको क्या बोला? बैठा था बाबा अपने रूम में तो बाबा ने बोला आओ बच्चे आओ। बाबा का एटीट्यूड बच्चे का था, वृत्ति वो थी। तो उसने सोचा अरे बाबा ने तो मेरे को बच्चा बोल दिया, अभी मैं उनका बच्चा बाप को कैसे मार सकता हूं। तो आके पांव पड़ गया। तो ये क्या हो गया? वृत्ति से वृत्ति की सेवा, एटीट्यूड। उसी तरह से स्मृति की सेवा। एक बार एक बहन यहां ही आई थी, मैं टीचर्स क्लास कराने आई थी और हमारे भट्टी में ही वो आई थी। उसने अपना अनुभव सुनाया हमको कि उसको कहां कहां तो हरिद्वार के कहां की बात सुनाई कि एक महात्मा कोर्स करने आए उसके पास। उसको लगा मैं पहले लगा मैं छोटी हूं, महात्मा ने भी सवाल पूछना शुरू किया। वो बहन ने बोला कि ऐसे करो कोर्स के बाद मेरे को आप पूछना मैं जवाब देगी। फिर वो बहन ने कहा ठीक है। फिर वो बहन ने संकल्प किया कि मैं एक शिव शक्ति हूं ऐसा सोच के कोर्स कराएगी। फिर उन्होंने 7 दिन कोर्स करा लिया। फिर बहन ने पूछा अभी आपको जो भी महात्मा जी सवाल पूछना है तो पूछो। तो उसने कहा अभी मेरे पास कोई भी नहीं है सवाल, लेकिन मैं मेरा एक अनुभव सुनाऊं। जब आप कोर्स करा रही थी तो मेरे को ये फील हो रहा था कि कोई छोटी बहन मेरे को कोर्स करा रही है, ऐसा मैंने फील नहीं किया। मेरे को ऐसे लग रहा था कोई शिव शक्ति मुझे कोर्स करा रही है। तो ये क्या हुआ? स्मृति से स्मृति की सेवा। उसी तरह दृष्टि से दृष्टि की सेवा। हाँ बाबा या दादी हमें मिलती तो कैसे हो हाय ऐसा नहीं, पहले हमको रूहानी परी दृष्टि से भरपूर करते। दृष्टि से दृष्टि की सेवा, स्वरूप से स्वरूप की सेवा। मैं आत्मा सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप, मैं दूसरे को भी ऐसा स्वरूप बनाऊं, ये है मनसा सेवा। तो बाबा से हमारा सर्व संबंध जो है वो हमारा गहरा, जब हम मनसा सेवा करने चाहते बाबा के साथ हमारा गहरा संबंध होना चाहिए, जैसे हमारी दादियों का। जानकी दादी है, एक बार मैं पूना उसके साथ गाड़ी में जा रही थी, मैंने कहा दादी आपके अंदर इतना ज्ञान का फ्लो निकलता ही रहता है, जैसे वो नायग्रा फॉल्स गिरता ही रहता, तो फ्लो ज्ञान का, तो कारण क्या? दादी ने इतना जवाब दिया अच्छा कि देखो मैं कभी मेरी एनर्जी को वेस्ट करती नहीं हूँ, एक बात, और दूसरा मैं व्यर्थ बातों में जाती नहीं हूँ, और मेरे को भी कह दिया तू भी मत जाया करना। और देखो ये दादी का संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल। एक बार पार्ला आई और हैदराबाद जा रही थी, मैंने बोला दादी हैदराबाद मत जाओ, मैंने आज पेपर में पढ़ा है बहुत गर्मी है वहां, लोग मर गए हैं, इतना डिग्री है, सब कुछ बताया। बताने के बाद दादी ने मेरे को ऐसा जरा जोर से बोल दिया अरे गर्मी मेरे को क्या करेगी। तो मैं चुप हो गई और चुपचाप एयरपोर्ट पर छोड़ के आई। और दादी का प्लेन जैसे लैंड हुआ जोर से बारिश आई, उधर ठंडक हो गई। तो देखो दादी निश्चिंत थी, बेफिक्र थी, ऐसा मेरे को हुआ गर्मी गर्मी, दादी को कुछ नहीं था, निश्चिंत थी, निश्चय था मैं सेवा करने जा रही हूँ, बेफिक्र बादशाह। और दादी मस्त फकीर कहते हैं, तो वहां हो गया दादी का ये। ऐसे बहुत काफी अनुभव है कि कैसे हम दादियों से बाबा से सीखे कि हमें भी ऐसी बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनानी है। और आप तपस्वी कुमार हमारे यज्ञ के आधार स्तंभ यहाँ भट्टी करने आए हैं, आप ये समझो दुनिया में बहुत लोग हैं, आप उसमें क्या हो, कोटों में कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो जो आपने ऐसा श्रेष्ठ अपना जीवन बनाया हुआ है, तो सदा ये स्थिति में आपको रहना ही है और रहेंगे ही। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी ने तो आज यज्ञ की इतिहास की कहानियों के पन्ने खोल खोल के दिखा दिए कि हर एक के जीवन चरित्रों के अंदर कितने अनमोल ईश्वरीय रतन समाये हुए हैं, क्योंकि अनुभव गहरा सागर होता है, तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो दादियों के संग
एक बात खाली सुना दो इनको, आपने इन्होंने हम बोला परिचय देते कि योगिनी बहन, मतलब हमारे पास पार्ला में बहुत क्या बोलेंगे कलाकार लोग आते हैं, लेकिन एक सुनाओ कि हमारे पास कवि प्रदीप जी जो नेशनल पोएट है ना, राष्ट्रीय कवि, नाम सुना है जिसने, ये मेरे वतन के लोगों, मुखड़ा देख ले प्राणी, जितने हमारे मुरली के गीत है ना बजते थे वो सब उसने ही लिखे थे, कवि प्रदीप जी ने। वो पार्ला में आने लगे और मैंने एक दिन उसने मेरे को बोला, रोज आते थे, कि तू तेरे को पता है मैंने गीत लिखा था साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मैंने कहा मेरे को पता नहीं आपने क्यों लिखा, वो नहीं पता। बोला इसलिए लिखा कि उसने बिगर खड़ग पी, माना तलवार बंदूक बिगर आजादी दिलाई। तो मैंने बोला जनवरी मास था उस, तो मैंने कहा एक ब्रह्मा बाबा के लिए बना दो ना ऐसा गीत। वो वहीं बैठा था और ऊपर बाबा का फोटो लगा था, उसने वहीं मेरे को फटाफट लिख के दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन खुशहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। फिर हमने महेंद्र कपूर से गवाया था, लेकिन उसी समय उन्हें हमारे बहुत अच्छे ऐसे कई गीत जो है वो बहुत अच्छे किए, और दादी ने फिर उसको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया, क्योंकि दादी कहती थी कि हमारा यज्ञ में ब्रह्मा बाबा को बहुत पसंद था गीत, पीयू पीयू बोल एक गीत था, वो बाबा उनका लिखा हुआ गीत यज्ञ में बजाता था। तो मैंने कहा सब ने योग किया है आपके रिकॉर्ड पर, इसलिए आप बाबा का ज्ञान लेने हमारे पास यहाँ आ गए हो। तो ऐसे उस भाई दादी ने इसको जैसे अवार्ड दिया, मेरे को दादी ने कलश दिया चांदी का कि तू उसको मेरी ओर से जरूर देना। मैं उसको देने गई नारियल और ऐसा कलश, कभी हमारे ऐसे पैसे नहीं मांगते थे वो, बाबा का लिख के देते थे। फिर देने गई, उसके 15 दिन के बाद उसको दादा फाड़के अवार्ड मिला। तो मैंने कहा देखो पहले दादी ने आपको अवार्ड दिया, बाद में आपको दूसरा अवार्ड मिला। तो ऐसे वहाँ बहुत कलाकारों की सेवा होती जाती,
अनुभवों का सागर है ये, तो खुटता नहीं है, पूरा भागवत है, पूरी रात भी आप बैठे रहेंगे तो ये पुराण चलता रहेगा, क्योंकि माँ सरस्वती जब आ जाती है तो फिर ठहर जाती है, तो अभी सरस्वती की कृपा हुई है।